आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीमच में कहा, मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से होगा मुक्त। जनजातीय क्षेत्रों में समुदाय आधारित आजीविका और जलवायु परिवर्तन पर कल से भोपाल में होगी दो दिवसीय कार्यशाला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रिक्स देशों की बैठक के लिए ब्राजील के दौरे पर। और प्रदेश में एक बार फिर तेज गर्मी, 9 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। इस प्रण को पूरा करने में सीआरपीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह आज नीमच में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा में सीआरपीएफ के कर्मियों के अदम्य साहस और समर्पण की सराहना की।
कोबरा बटालियन आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है।
केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा है कि सीआरपीएफ के 3 लाख जवान देश में कानून व्यवस्था और शांति स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है।
आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 2 परिचालन सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान बटकर हर जगह पे देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सीआरपीएफ इस देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव सीआरपीएफ को प्राप्त।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, जिले के प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्र के लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। केंद्रीय मंत्री ने वीरता पदकों के लिए चयनित जवानों को सम्मानित कर विशिष्ट सेवाओं के लिए सुरक्षा बल के जवानों को पुरस्कृत भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय वन तथा पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में वन पुनर्स्थापन, जलवायु परिवर्तन और समुदाय आधारित आजीविका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कल 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में आयोजित होने वाली कार्यशाला में विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों में वनों की भूमिका पर मंथन होगा। कार्यशाला में प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह उद्बोधन देंगे। इस मौके पर जनजातीय समुदाय और प्राकृतिक संरक्षण पर केंद्रित ऑडियो विजुअल प्रस्तुति भी दी जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस के मौके पर कल देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI स्मारकों को देखने जाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यटकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए प्रोत्साहित करना है। ASI के संरक्षण में 3698 स्मारक और स्थल हैं। इस साल अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस का विषय आपदा एवं संघर्ष से खतरे में धरोहर रखा गया है। इसके तहत प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, खतरों और संघर्षों से धरोहर स्थलों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने केंद्र सरकार के इस आश्वासन को दर्ज किया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। कोर्ट ने महाधिवक्ता तुषार मेहता के इस आश्वासन पर भी गौर किया कि मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति, जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के स्वरूप में वर्गीकृत संपत्तियां भी शामिल हैं, फिलहाल अपरिवर्तित रहेंगी। इस मामले की सुनवाई अब 5 मई को होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने रक्षा बजट का 75% भाग घरेलू कंपनियों से खरीद के लिए आरक्षित किया है। नई दिल्ली में आज रक्षा सम्मेलन में श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि देश में रक्षा उत्पादन वर्ष 2014 में 40,000 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्तमान में 1,27,000 करोड़ रूपये से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2029 तक 3,00,000 करोड़ रूपये के रक्षा उपकरण बनाने का लक्ष्य रखा है।
हमारा लक्ष्य है भारत को एक ऐसा देश बनाना जो न केवल अपनी रक्षा जरूरतें खुद पूरी कर सके बल्कि दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करने में पूरा सहयोग कर सके। मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इस विजन के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं। आज भारत का डिफेंस सेक्टर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को रेजिलिएंट बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और आज भारत का डिफेंस सेक्टर जहां सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, वहीं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को भी रेजिलिएंट बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक के लिए इन दिनों ब्राजील प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने ब्राजील में सोयाबीन उत्पादन प्लांट और टमाटर के खेतों सहित कुछ अन्य संस्थानों का दौरा किया। ब्राजील के सोयाबीन उत्पादन संयंत्र का अवलोकन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में सोयाबीन का उत्पादन ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी ब्राजील के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अभी ब्राजील से भारत सोया तेल आयात करता है। उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा की गई, भारत से कैसे तेल का निर्यात हो सकता है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि के और तेजी से विकास के लिए कृषि व्यापार समुदाय को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील दोनों मिलकर पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत एंटी पायरेसी चैलेंज के फाइनल में पहुंचने वाले विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 1 से 4 मई 2025 को मुंबई में वेव्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। एंटी पायरेसी चैलेंज का उद्देश्य फिंगर प्रिंटिंग और वाटरमार्किंग समाधानों में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना था। इस चुनौती में 1,600 से अधिक पंजीकरण मिले और 132 विचार प्रस्तुत किए गए। शीर्ष 7 फाइनलिस्ट वेव्स 2025 के दौरान अपने समाधान प्रस्तुत करेंगे। भोपाल समेत प्रदेश भर में भीषण गर्मी का सितम जारी है। ओले, बारिश और आंधी का सिस्टम कमजोर पड़ते ही प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का असर पड़ गया है। इंदौर उज्जैन संभाग सबसे गर्म है। ग्वालियर चंबल संभाग में भी गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में कल 9 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। इसमें रतलाम, नर्मदापुरम, खंडवा, शाजापुर, खरगोन, नरसिंहपुर, उज्जैन, धार और गुना शामिल है। सबसे गर्म रतलाम रहा जहां तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटों में पांडुर्ना और मनावर में बारिश हुई, वहीं सिवनी में ओलावृष्टि के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। आपको समाचार संक्षेप में। अनूपपुर में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत वाटरशेड यात्रा अभियान के तहत मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत गिरारी खुर्द में 19 अप्रैल को होगा। शिवपुरी जिले में सन 1857 की क्रांति के प्रमुख योद्धा तात्या टोपे की याद में स्वराज संस्थान भोपाल और जिला प्रशासन के समन्वय से 2 दिवसीय शहीद मेला कल से आयोजित किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले में अगले माह सभी ब्लॉकों में निःशुल्क खेल समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के माध्यम से बच्चों के खेल के टैलेंट को चिन्हित किया जाएगा। गुना में अनुविभागीय अधिकारी आरून मंजुषा खत्री द्वारा आज सिविल हॉस्पिटल आरून और आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। गोरखपुर मंडल में विकास कार्यों के चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया है। इसमें पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस आज से 2 मई तक निरस्त रहेगी। खरगोन में देश का 448वां पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत आज हुई। एसडीएम कार्यालय परिसर में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने इसकी औपचारिक शुरुआत की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।